ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 31वां अध्याय श्लोक नंबर 5 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। मातर जगधान पाना दे एतद् धातुर असम्मते सेते विन्मूत्र योगर्ते सा जंतुर्जंतु संभवे। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के गृहित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा आता है। तात्पर्य। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्या यानी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वयंकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी मां को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और यह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। मातुर जगधात न पाना देर यदत धातुर असम्मत है सेते विन मूत्र योगत करते साजंतुर जंतु संभव है। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में गर्भस्थ शिशु की दशा का वर्णन है कि किस प्रकार गर्भस्थ शिशु या भ्रूण मातृगर्भ में कष्ट सहन करता है। जब हम कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तो हम लोग ये तो अनुभव करते हैं कि वृद्धावस्था का कष्ट क्या है, क्योंकि इस जीवन में जब हम वृद्ध होते हैं वृद्धावस्था के कष्ट का अनुभव कर सकते हैं और व्याधि या रोग की अवस्था का भी अनुभव हमें है कि व्याधि ग्रस्त होने पर हम कितना कष्ट सहन करते हैं या करना पड़ता है, हम सभी को पता है। और मृत्यु का कष्ट जो मृत्यु सजा पर पड़े हुए व्यक्ति को अनुभव हो जाता है, जो मृत्यु सजा पर पड़े नहीं है अभी तक उनको पता नहीं चलता है कि मृत्यु सजा पर पड़े हुए व्यक्ति को कैसा कष्ट होता है। किंतु हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं मृत्यु सजा पर पड़े हुए व्यक्तियों की अवस्थाओं को देखकर, कैसे ये लोग भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करते हैं मृत्यु सजा पर, और कभी कभी अत्यंत भयभीत होकर चित्कार भी करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अनेक वर्षों तक मृत्यु सजा पर पड़े रहते हैं और हिल डुल नहीं सकते, एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, तो बहुत कष्ट भोग करना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत अनुभव व्याधि, वृद्धावस्था और मृत्यु की अवस्था का हमें हम लोगों का है। किंतु जन्म यंत्रणा, यद्यपि हम कहते हैं जन्म यंत्रणा व्यक्ति भोग करता है, किंतु उसके अनुभव को हम भूल गए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जन्म क्या यंत्रणा है, क्योंकि मातृगर्भ में रहते हुए हमें कैसी स्थिति में हम रहे हैं और उस समय हम किस प्रकार का कष्ट भोग कर रहे थे, जन्म के उपरांत हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये स्मरण नहीं है कि ये जन्म यंत्रणा क्या है। किंतु मातृगर्भ में जो कष्ट है, यद्यपि हमें स्मरण नहीं है, किंतु भगवान हमारे लिए हमें स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, जबकि हम भूल गए हैं, फिर भी हमें स्मरण दिलाते हैं कि मातृगर्भ में रहते हुए हमें कितना कष्ट भोग करना पड़ता है। क्योंकि मातृगर्भ का जो स्थान है वो कोई सुखद स्थान नहीं है। और इस बात को और कोई नहीं बता सकता, केवल भगवान ही बता सकते हैं कि जिस बात को हम याद नहीं कर सकते, किंतु भगवान को सब कुछ याद है, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में हमारे साथ आते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हर जन्म में हमारा साथ देते हैं। और उनको कहा गया है भगवत गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो उपदेष्टा और अनुमंता भी है, तो हमारे कार्यकलापों का वो साक्षी भी है। और हमें ये भगवान भी कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो भगवान जबकि हमारे कार्यकलापों के साक्षी हैं, इसलिए जितने जन्म हम जितने भी कर्म किए हैं, चाहे पाप हो या पुण्य, इन सारे कर्मों के वो साक्षी हैं और उसके अनुरूप हमें फल देते रहते हैं। इस जन्म में जब हम कोई दुख भोग करते हैं या कष्ट भोग करते हैं, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि पूर्व जन्मों में हमने कई पाप कर्म किए होंगे, जिसके फल स्वरूप इस जन्म में हमें कष्ट भोग करना पड़ रहा है। और यदि कोई पुण्य कर्म किए होंगे, उसके फल स्वरूप हमें कुछ सुख भी प्राप्त होता है, यद्यपि वो सुख क्षणिक है, थोड़े समय के लिए आता है। यहां तक कि देवलोक में जो देवता लोग रहते हैं, देवलोक का सुख भी स्थाई नहीं, अस्थाई है। खीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कि जो देवलोक को प्राप्त होते हैं अपने पुण्य कर्म के बल पर, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है वो पुनः इस मर्त्यलोक में आते हैं देवलोक से। इसलिए देवलोक में भी ये स्थायी रूप से रह नहीं सकते। अतः भगवान कृष्ण कहते हैं आवम भुवनालोक पुनर आवर्तिन अर्जुन। इस संसार में जीव कभी देवलोक, कभी ब्रह्मलोक में जन्म लेता है, कभी निचतर लोक में जन्म लेता है। इस प्रकार वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है, घूम रहा है। मां उपेत्यतो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। किंतु भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यदि तुम मुझको एक बार प्राप्त हो जाओगे तब फिर तुम्हें इस संसार में और भटकना, भ्रमण करना नहीं पड़ेगा, जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोग करना नहीं पड़ेगा। तो ये संसार इस प्रकार है, संसार का यह नियम है और इन नियमों को भगवान ने ही बनाया है। इसलिए वही संसार के दृष्टा भी है, सृष्टा भी है और हमारे पालन करता भी है और दंड करता भी है, सब कुछ वही है। तो वही बता सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है और मृत्यु के पूर्व, जन्म से पूर्व क्या होता है, भगवान को ही पता है। और यहां पर इस श्लोक में भगवान ही अपनी माता देवहूति को यह उपदेश दे रहे हैं। भगवान ही इस बात को बता रहे हैं कि मातृगर्भ में रहते हुए जीव को कितना कष्ट होता है। तो इस पर हो सकता है कि कुछ लोग अविश्वास करते हो, किंतु किसी के विश्वास या अविश्वास पर भगवान के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम सब भगवान के नियमों के अधीन है। हम बंधे हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के नियमों में बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान के नियमों के अंतर्गत हमें सुख दुख भोग करना पड़ेगा। अतः जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस बात को, भगवान के उपदेशों को जानते हुए वो सतर्क हो जाता है कि किस प्रकार इन कष्टों से वो मुक्त हो जाएगा। और भगवान ने कष्टों से, दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बता दिया है। ये कष्ट जीव कैसे भोग करता है उसको भी बताया है और इनसे मुक्त होने का उपाय भी बता दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान के उपदेशों को माने या न माने, इन कष्टों से मुक्त होने के लिए प्रयास करें या ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान ही इन सब के बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई साधारण जीव नहीं बता सकता कि मातृगर्भ में कैसी यंत्रणा है। साधारण जीव भूल गया है, वो कैसे बताएगा। किंतु भगवान बता सकते हैं कि जीव कैसा कष्ट भोग करता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जीव कैसे बार बार मातृगर्भ में प्रवेश करता है, एक बार नहीं बार बार, और इस प्रकार जन्म यंत्रणा भोग करता रहता है। तो इसका कुछ आभास, जन्म यंत्रणा का आभास या सूचना कुछ प्रदान की गई है इस श्लोक में, और आगे के श्लोकों में भी इसी के संबंध में ही बताया गया है। तो ये भगवान कहते हैं कि मातृ जगधात अन्न पानातिर एधत धातुर असम्मते, कि जब जीव मातृगर्भ में प्रवेश करता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो कैसे जीवित रहता है और कैसे शरीर धारण करता है मातृगर्भ में। तो जैसे पहले श्लोकों में बताया गया है कि 5 दिन में जीव की स्थिति क्या होती है, 10 दिन में क्या होती है, 1 महीने में क्या होती है, 2 महीने में क्या होती है, इस प्रकार चार महीने में, इसके पूर्ववर्ती श्लोक में बताया गया है कि गर्भधारण के चार महीने के भीतर शरीर के साथ मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार जीव में विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है। कभी कभी ऐसे भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो यह नहीं मानते हैं कि भ्रूण में जीवन होता है, इसलिए भ्रूण हत्या करने में वो पश्चातपद नहीं होते हैं। ऐसे आजकल इसका प्रचार भी किया जाता है कि भ्रूण हत्या ठीक है, ऐसे है ये प्रचार करते हैं क्योंकि उनमें जीवन नहीं होता है। किंतु श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि जब तक जीव का प्रवेश नहीं होगा तब तक कोई स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती। जीव के प्रवेश होते ही गर्भ का संचार होता है और जीव के शरीर का विकास होता है मातृ गर्भ में। इसलिए गर्भधारण के पहले दिन से ही जीवन है, ये नहीं है कि भ्रूण का जीवन नहीं है इसलिए हम किसी भी समय उसकी हत्या कर सकते हैं। और जितने लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं ये सारे के सारे जीव हत्या के पापी हैं, ये बहुत बड़ा पाप करते हैं। और यहां तक कि आजकल माता पिता भी भ्रूण हत्या करने के लिए पश्चातपद नहीं होते हैं, ये सबसे बड़े दुख की बात है। कलियुग का प्रभाव है, जबकि माता पिता अपना जीवन देकर अपने शिशु की रक्षा करते हैं क्योंकि शिशु का वही रक्षक होते हैं। किंतु आजकल देखा जाता है कि बिना सोचे समझे अपने सुख के लिए, अपने दायित्व से मुक्त रहने के लिए माताएं भ्रूण हत्या कर देती है। ये नहीं सोचती है कि वो अपनी संतान की हत्या कर रही है। कभी समय था जब माताएं अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए अपने जीवन तक देने के लिए प्रस्तुत रहती थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि माता उत्तरा, जब परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रेरण किया था, उसका उद्देश्य था कि संसार से पांडव वंश को निश्चिन्न कर देने के लिए, कोई भी पांडव यहां नहीं बचेगा। इसलिए जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है, जो शिशु माता के गर्भ में है, उसका वध करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रेरण किया था। और माता उत्तरा जो भगवान कृष्ण की भक्त थी और वो जानती थी कि इस स्थिति से उनकी रक्षा और विशेष रूप से उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही उपयुक्त है, और कोई इस स्थिति से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। जबकि पांडवगण वहां उपस्थित थे, उन लोगों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए थे, किंतु समय बहुत कम रह गया था। और कोई आश्चर्य माता उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचा सकता था, और वह चमत्कार कौन कर सकता है, केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते थे। इसलिए माता उत्तरा ने भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस स्थिति में जब ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ को दहन कर रहा है, इस स्थिति से बचाने के लिए कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। इसलिए माता उत्तरा दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आई उस समय भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए रथ पर उठ चुके थे, द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत थे। तो माता उत्तरा दौड़ती हुई आई और ये चित्कार करती हुई कह रही थी भगवान कृष्ण से कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, पाही पाही रक्षा करो रक्षा करो। ये दूर से चित्कार करती हुई आ रही थी और ये कह रही थी कि पाही पाही महायोगिन, हे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे जगतपते सारे जगत के स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए। नान्यत्वत अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। माता उत्तरा ये तर्क दे रही थी, वो भगवान कृष्ण की शरण में क्यों आई थी, क्योंकि वो देख रही थी। नान्यत्वत अभयं पश्ये, हे कृष्ण आपके अतिरिक्त इस संसार में मैं कहीं भी अभय का दर्शन नहीं कर पा रही, अर्थात सर्वत्र भय दृश्यमान है, संसार के सारे लोग भयभीत हैं, मृत्यु के भय से सारे लोग भीत त्रस्त हैं, केवल आप ही एकमात्र हैं जो मृत्यु से भीत त्रस्त नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु स्थिरति मद भयात, मेरे भय से मृत्यु विचरण करती। तो भगवान मृत्यु से भयभीत नहीं है, मृत्यु भगवान से भयभीत। अतः माता उत्तरा कह रही थी कि आपके अतिरिक्त मैं अन्यत्र कहीं भी अभय का दर्शन नहीं कर रही, मैं देख रहा हूं कि सारे लोग भयभीत हैं। तो जो लोग भयभीत हैं ये लोग मुझे कैसे इस भय से बचा सकते हैं, इस मृत्यु भय से। अतः जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जैसे संसार में हम लोग देखते हैं कि संसार में लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे पिता माता पुत्र कन्या पत्नी आत्मीय स्वजन है, ये लोग मुझे बचा सकते हैं, मेरे दुख में मेरी विपत्ति में ये लोग मेरी सहायता कर सकते हैं। किंतु कौन किसकी सहायता करेगा इस संसार में, जो व्यक्ति स्वयं मृत्यु से भयभीत है वो दूसरों को कैसे मृत्यु से बचा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति को बचा सकता है। तो माता उत्तरा कह रही थी कि नान्यत्वत अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मैं देख रही हूं कि संसार में सर्वत्र मृत्यु ही विद्यमान है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। और जब मैं और मेरा गर्भ मृत्यु आसन्न मृत्यु के निकट है, तो हमें बचाने के लिए आप ही एकमात्र शरण है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूं। और उसके पश्चात माता उत्तरा यहां तक भी कह देती है कि कामं दहतु मां गर्भ। माता उत्तरा कहते हैं, हे कृष्ण कामं दहतु मां गर्भ, मैं कामना करती हूं कि चाहे अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र से मैं दग्धीभूत हो जाऊं, मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, इसकी मेरी कोई चिंता नहीं है। किंतु मां में गर्भ निपत्यता, किंतु हे कृष्ण मुझे मेरे गर्भ की चिंता है, गर्भस्थ शिशु की चिंता है, इसलिए मैं अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर भस्मभूत हो जाता है तो हो जाने दो, किंतु आप कृपा करके मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। ये एक माता का उदाहरण है, जो माता अपने शिशु के लिए जीवन देने के लिए प्रस्तुत है। किंतु आजकल कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने गर्भस्थ शिशु को अपने हाथ से मारने के लिए पश्चातपद नहीं होती है। ये बहुत बड़े दुख की बात है और बहुत बड़ा पाप भी है। और इस प्रकार कितने शिशुओं की हत्या होती है, भ्रूणों की हत्या होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वही भ्रूण किस प्रकार गर्भ में रहकर कष्ट सहन करता है, क्योंकि वह जीवित है, उसमें जीवन है, इसलिए वो कष्ट सहन करता है गर्भ में रहकर। तो कहते हैं मातृ जगत अन्न पाना दे। तो माता जो भी अन्न या खाद्य ग्रहण करती है, पानादि पानीय द्रव्य ग्रहण करती है, ये सब कुछ एधत धातुर असम्मत है। तो ये शिशु भी उसी को ग्रहण करके जीवित रहता है। माता जो भी खाएगी उसी से शिशु के शरीर भी पुष्ट होता है। जैसे माता का शरीर पुष्ट होता है, शिशु का शरीर भी उसी से पुष्ट होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों से ये सब बताया जाता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का यत्न लेना ये माता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि माता ही शिशु को जन्म देती है और समाज को उपहार के रूप में शिशु को देती है। अगर माता एक अच्छे शिशु को जन्म देगी जिससे समाज की भलाई होगी, यदि शिशु भगवान का भक्त है, धर्मपरायण है, तो इससे समाज की भलाई है। समाज में अगर इस प्रकार अधिक से अधिक कृष्ण भक्त जन्म लेंगे तो वह समाज बहुत अच्छा समाज होगा, वह शांति और सुख बुद्धि प्राप्त होगा। किंतु यदि माताएं ऐसे संतानों को जन्म देंगी जो धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, पापाचार करेंगे, संसार में अशांति, अनीति, भ्रष्टाचार, पापाचार बुद्धि प्राप्त होगा, जिससे समाज में सारे लोग कष्ट भोग करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि माताओं को अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है और वो किस प्रकार एक कृष्ण भक्त के रूप में जन्म ग्रहण करेगा, इसका भी ध्यान रखना है। यदि माताएं कृष्ण भक्त हैं तो गर्भस्थ शिशु भी कृष्ण भक्त के रूप में जन्म ग्रहण कर सकता है। माताएं यदि नास्तिक हो, भगवान पर विश्वास नहीं करती हो और कोई भी चीजें खाती हो गर्भावस्था में, तो वह शिशु कभी भी धार्मिक नहीं बन सकता और वह शिशु समाज के लिए भार सदृश हो जाएगा, जैसे आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो प्राचीन काल में इसलिए माताओं को सुरक्षा दी जाती थी और उसके साथ साथ गर्भस्थ शिशुओं को भी सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसा बताया गया है कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए। इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, गर्भस्थ शिशु भी श्रवण करता है। माता यदि भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करेगी तो शिशु भी श्रवण करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का उपदेश गर्भ में रहते हुए श्रवण किया था, और अभिमन्यु ने माता के गर्भ में रहते हुए अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेद करने के बाद भी उन्होंने सीखा था। तो ये गर्भस्थ शिशु सुनता है, तो माताएं क्या करती हैं उसका प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर। माताएं क्या खाती हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर। माता यदि अधिक नमक, या अधिक तीता द्रव्य खाएगी तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट होता है, क्योंकि उसका शरीर कोमल होता है, वो उसको सहन नहीं कर पाता है। इसलिए गर्भवती माताओं को ये मनाए हैं शास्त्रों में, और ये बताया भी जाता है कि इस प्रकार का खाद्य नहीं खाना चाहिए उस समय। तो गर्भवती शिशु इस प्रकार वृद्धि प्राप्त होता है, उसका शरीर माताएं जो खाद्य खाते हैं उसके अनुसार उसका शरीर वृद्धि प्राप्त होता है। किंतु सेणे बिन मूत्र योर गर्ते, किंतु वो गर्भस्थ शिशु जो है वो माता के गर्भ में जो रहता है वो किस स्थान पर रहता है, जहां माता के गर्भ में जो गर्त है जहां शिशु रहता है, गर्भाशय जिसको कहते हैं, तो गर्भाशय बिन मूत्र अर्थात विष्ठा और मूत्र से भरा है, मल मूत्र से भरा है, उसी स्थान पर ये शिशु को रहना पड़ता है, जो निश्चित रूप से अच्छा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसे स्थान पर रहना नहीं चाहेगा। किंतु शिशु नहीं चाहते हुए भी ये अनभिप्रेत है शिशु के लिए, अभिप्रेत नहीं है, शिशु रहना नहीं चाहता है उस स्थान पर, किंतु वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों को कोई कहेगा ऐसे स्थान पर रहने के लिए, हम कहेंगे नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं नहीं रहने के लिए, या हम रहने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु शिशु अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता उस समय जब तक वो माता के गर्भ में है। वो रहने के लिए बाध्य है ऐसे स्थान पर, और केवल इतना ही नहीं, श्वेत बिन मूत्र योर गर्त, जो असम्मत है, जो घृणित स्थान है, ऐसे स्थान पर उसको रहना पड़ता है, सा जंतु जंतु संभव है, और वो स्थान है जहां मल और मूत्र भरा है, जिस गर्त में, जिस गर्भाशय में, वो जंतु संभव है, केवल वहां पर ये शिशु जन्म लेता है या नहीं है, वो स्थान पर ऐसे बहुत सारे कृमि कीट भी जन्म लेते हैं। कृमि और कीट वहां जन्म लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कृमि कीट भी जन्म लेते हैं इसी गर्भाशय में। इसलिए जितने भी कृमि और कीट हैं ये सब गर्भस्थ शिशु के सोदर हैं, एक उदर से जन्म हुआ है इसलिए उनको सोदर कहा गया, ये सब उसके भ्राता है कृमि और कीट। तो ये क्या करते हैं, यद्यपि ये भ्राता है, एक ही उदर से जन्म लिए हैं, जिस प्रकार एक ही उदर से दो शिशु जन्म लेते हैं तो उनको सोदर कहा जाता है, एक ही उदर से जन्म लेने के कारण सोदर या सहोदर, या आप ठेठ हिंदी में कह रहे हैं जुड़वा। तो किंतु ये कृमि और कीट ये नहीं सोचते हैं कि ये शिशु हमारा भाई है, भ्राता। तो ये लोग क्या करते हैं, इस गर्भस्थ शिशु को काटते रहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि एक शिशु माल मूत्र के बीच पड़ा हुआ है गर्भाशय में, और एक दो नहीं, इस प्रकार कई सैकड़ों कृमि कीट काट रहे हैं एक साथ चारों ओर से उस शिशु के शरीर को, और वो शिशु कुछ नहीं कर सकता, उन कृमि और कीटों को निकाल नहीं सकता वहां से, वो सहन करने के लिए बाध्य है उनका काटना। जैसे मान लीजिए हम एक स्थान पर बैठे हुए हैं, सैकड़ों चींटियां आकर हमें काटने लगेंगी एक साथ, हमें कैसा लगेगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और हम उसको सहन भी नहीं कर सकते, हम तुरंत चींटियों को भगाने के लिए प्रयास करेंगे। तो जबकि यहां हम सचेत हैं, चींटियों को भगाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, किंतु गर्भस्थ शिशु ऐसा नहीं कर सकता। वो सहन करने के लिए बाध्य हैं गर्भ में। ऐसे कई कृमि कीट काटते रहते हैं और गर्भस्थ शिशु कुछ नहीं कर सकता, और उसके कोमल शरीर में बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में शिशु को रहना पड़ता है गर्भ में, इसलिए ये कोई अच्छा स्थान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम बार बार जन्म लेने से क्या असुविधा है हमारे लिए हम लेंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी यहां तक तो लोग स्वीकार कर लेते हैं जब हम कहते हैं कि देखिए, आप मनुष्य जन्म का यदि सदुपयोग नहीं करेंगे, इस जन्मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में आपको कुत्ता और गधा बनना पड़ेगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है तो ये लोग कुत्ता और गधा बनने के लिए भी प्रस्तुत है। ये लोग नहीं जानते हैं उस जन्म में कितना कष्ट भोग करना पड़ता है। ये लोग मूर्ख है जो इस कष्ट को नहीं जानता है या जानने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो वो निश्चित रूप से मूर्ख है। अब ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संख्या विशेष रूप से इस कलयुग में अधिक है। तो ये लोग कष्ट भोग करने के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, यही उनकी मूर्खता है। इसलिए कहा गया कि वही बुद्धिमान है जो कृष्ण की सेवा करता है, वही व्यक्ति संसार में बुद्धिमान है। जो कृष्ण की सेवा नहीं करता है निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, चाहे भौतिक दृष्टि से कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी यशस्वी क्यों ना हो, यदि वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसका सारा जीवन बेकार है, वृथा है। तो ये सब कहने का अर्थ है कि हम लोग जाने कि जिस चीज को हम भूल गए हैं, गर्भावस्था में कितना कष्ट है, यदि हम जानेंगे तो उस गर्भ में और एक बार प्रवेश करने के लिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे, यही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार माता सती माता को इसका उपदेश भी दिया था, जिस प्रकार भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को दे रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कपिल देव के भावावेश में एक बार सती माता को भी यही तत्व बता रहे थे, जो चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गर्भावास जत दुख जन्म व मरण कृष्ण र सेवक माता किछु ही न जाने। तो कहते हैं कि माता गर्भावास में अर्थात गर्भ में आवास करते समय, रहते समय जितना दुख है, और जन्म के पश्चात जितना दुख है, मृत्यु के समय जो दुख है, इसको दूसरे लोग तो भोग करते हैं, किंतु जो कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण भक्त ये दुख भोग नहीं करता, ये गर्भावास का दुख भोग नहीं करता, क्योंकि वो बार बार जन्म नहीं लेता। भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए वो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, इसलिए मृत्यु यंत्रणा भी वो भोग नहीं करता है, और शरीर त्याग करने के उपरांत भगवान के धाम को प्राप्त होता है, अतः पुनः मातृगर्भ में आकर इस जन्म यंत्रणा भी भोग करना नहीं पड़ता है। जगतेर पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। जिस प्रकार हम कहते हैं कि माता पिताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, किंतु माता पिताओं के ऐसे कई माता पिता हमारे हुए हैं कई जन्मों में, और सारे माता पिताओं के जो परम पिता है, सारे जीवों के जो परम पिता है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी वही बात कहते हैं, पिता हम नश्य जगत हो माता भाता पिता अमर। मैं सारे जगत का पिता माता भाता सब पिता अमर सब कुछ हूं, किंतु ऐसे जो पिता हैं उनकी सेवा को जो जीव भूल करके संसार में अपने आत्म स्वजन की सेवा करता है अपनी सेवा करता है तो वो वस्तु तो पितृद्रोही है। परम पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन वो नहीं करता, इसलिए वो पितृद्रोही है। और उसका परिणाम है जिस प्रकार भौतिक संसार में पितृद्रोही होने पर कष्ट भोग करना पड़ता है या दुख भोग करना पड़ता है, उसी प्रकार परम पिता के प्रति द्रोह करने पर परम कष्ट भोग करना पड़ता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पितृद्रोही पातक जन्म जन्म था। तो भगवान कृष्ण के प्रति जिसने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है जन्म जन्मांतर उसको कष्ट भोग करना पड़ता है। चित्त दिया सुन माता जीवेर जगति कृष्ण ना भजिले पाए जत के दुर्गति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु माता से कहते हैं कि माता आप ध्यान देकर सुनिए कि जीव की जो गति होती है भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करने पर जो दुर्गति होती है इसको ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनने पर इस प्रकार दुर्गति से बचने के लिए हम प्रयास करेंगे। जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं इस दुर्गति से बचने के लिए प्रयास नहीं करते। तो कहते हैं कि मरिया मरिया पुनः पाय गर्भावास सर्व अंग है पूर्व पापे और प्रकाश। ये बार बार मरते हुए बार बार जीव जन्म लेता है, गर्भावास को प्राप्त होता है, गर्भ में आश्रय ग्रहण करता है मातृगर्भ में। और इस प्रकार हर जन्म में जितने पाप किए हैं सारे पापों का फल उसको भोग करना पड़ता है। यहां तक ये बताया गया है कि गर्भावास में जीव अपने सत जन्म के पापों को स्मरण करता रहता है कि हमने कितने पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोग करना पड़ रहा है गर्भ में। कटु अम्ल लवण जननी जत खाए अंगे गया लगातार महामोह पाए। तो अभी जैसे हम बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु वही बात बता रहे हैं कि माता जो तीता खाती है अम्ल नमक लवण ये सब खाती है तो वो जाके शिशु के शरीर में लगता है तो उससे वो महामोह को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। और वो बार बार उसकी चेतना शून्य होती है। मांसमय अंग कृमि कुल बेड़ी खाए घुचाए तो नहीं सकती मरे जलाए। तो ये कृमि जो कीट काटते हैं इस प्रकार वो उनका दंशन सहन करता रहता है, उनको वहां से हटा नहीं सकता शिशु। और इस प्रकार तप्त पिंजर माझे नड़ित ना पारे, ये शिशु जो है ये तप्त जो पिंजरा है गर्भ है उसके भीतर वो रहता है वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकता, इस प्रकार की स्थिति में उसको रहना पड़ता है। और इस प्रकार की स्थिति में रहते हुए उस शिशु इस कष्ट से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता है। तो इसका आगे वर्णन है आगे के श्लोकों में कि शिशु की अवस्था क्या होती है और कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अगले श्लोकों में हम लोग सुनेंगे उसके बारे में। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।